इधर ही रहने दो।
नमो सर्वसिद्धानि नमो रूहि सर्वायरियानम् नमो रूहि सर्ववज्रायानम् नमो रूहि सर्वत्रिकालवर्ति सागुणम्। स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझा क्यों के भजन की सदगुरु भगवान। गुण एक एक जाके पर जय अनंत करे पर जय क्या है और परिणाम नाम परिणामक क्या है।
ये दोनों शक्तियां जो है, ये दोनों कार्य कह लो, शक्तियां कह लो, इससे संबंध रख रही है, दोनों परिणाम से संबंध रख रहे हैं। परिणाम शक्ति अलग है, लेकिन ये परिणाम में परिणाम तत्व है, ये ज्ञान से संबंध है इसका, परिणाम में और परिणाम तत्व का। जो ज्ञान रूप परिणाम, ऐसा समझिए, जो ज्ञान रूप परिणाम से होने योग्य है उसका नाम है परिणाम्य, और जो ज्ञान रूप परिणाम को करने वाला है उसका नाम है परिणामक। क परिणामक, परिणाम धन क माने करने वाला, कर्ता। परिणामक, परिणाम को जो करने वाला होता है उसको परिणामक कहते हैं, और जो परिणाम रूप होने वाला होता है उसे परिणम्य कहते हैं। परिणम्य, परिणामक। अब यहां पर ये देखो, परिणामक कौन है, ग्रहण करने वाला है या ग्रहण में आने वाला है, ग्रहण रूप होने वाला है या ग्रहण करने वाला है या ग्रहण कराने वाला है, ऐसा कह सकते हैं। तो जो परिणामक है वो परिणाम करने वाला है, परिणाम रूप करने वाला है। आत्मा को परिणाम रूप कौन करता है, तो बोले परिणामक करता है। तो उससे परिणाम रूप कौन होता है, तो बोले परिणाम में, उसमें आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है कि वो परिणाम रूप होती है, और आत्मा में एक ऐसी भी शक्ति है कि जो परिणाम को करती है। इससे क्या सिद्ध हुआ, इससे यह सिद्ध हुआ हमको कोई कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही परिणाम को करने वाला हूँ और मैं ही परिणाम रूप होने वाला हूँ, कोई दूसरा नहीं है। परिणाम में माने आत्मा में ऐसी शक्ति नहीं है कि दूसरे को परिणाम रूप कर दे,
बराबर,
ऐसी शक्ति नहीं है दूसरे को परिणाम, दूसरे का परिणाम कर देवे या दूसरे को परिणाम रूप कर देवे, ऐसी शक्ति नहीं है। स्वयं को ही परिणाम रूप कर देवे और स्वयं को ही परिणाम रूप हो जावे। बोले साहब मैंने बदल दिया, इसको बदल दिया अपने को, दूसरे किसी की जरूरत नहीं है, मैंने अपने आप को बदल दिया। मिथ्या तो था, सम्यक रूप हुआ आत्मा, तो बदला के नहीं बदला, बदला लेकिन किसने किसको बदला, बोले किसी ने किसी को नहीं बदला, मैंने ही मुझको बदला। ऐसा परिणाम में परिणाम, इसमें तो ज्ञान में घटाना है, तो ग्रहण करने वाला भी परिणाम और ग्रहण में आने वाला भी परिणाम स्वयं ही। तो इसलिए इस शक्ति में इन्होंने ये कहा कि ये परिणाम में परिणाम तत्व तो कौन है, तो बोले ग्रहण ग्राहण स्वभाव रूपा, एक ग्रहण करता है और एक ग्रहण कराता है, तो ये दोनों स्वभाव रूप ये ज्ञान ही है। अच्छा, तो ज्ञान में कौन ग्रहण करता है और कौन ग्रहण होता है, ज्ञान में कौन ग्रहण करता है और कौन ग्रहण रूप होता है, तो जो ज्ञानाकार है वो ग्रहण कराता है, वो ग्रहण कराता है, इसलिए ग्रहण स्वभाव रूप है वो ज्ञानाकार। और कौन ग्रहण में आता है, तो जो क्रियाकार है वो उसके ग्रहण में आते हैं, माने ज्ञानाकार वो ग्रहण ग्रहण है ना, ग्रहण ग्रहण कैसा हो जाता है, जब वो क्रियाकार रूप परिणमित होता है ज्ञानाकार, तो वो संपूर्णतः स्वयं क्रियाकार रूप हो जाता है, तो अपने ज्ञानाकार को छोड़ देता है क्या, बोले नहीं छोड़ता है, लेकिन फिर भी पूरा का पूरा उस रूप परिणमित हो जाता है। जो मूरख होते हैं ना मूरख, उनको तो अकेला क्रियाकार क्रियाकार ही दिखता है, उनको ज्ञानाकार नहीं दिखता है, वो बन नहीं जाता याद करना, तो नमक को मिला दिया सब्जी में तो ज्यादा हो गया थोड़ा नमक, बोली ये सब्जी कैसी है,
खारी।
ये सब्जी कैसी है, सब्जी कभी खाई? बोले ये जो अज्ञानी गेर उद्दे है ना, गेर उदाहरण जो गेर उद्दे है उनको ये सब्जी खारी लगती है, इनको ऐसा लगता है वो ज्ञानाकार तो छूट गया और ये पूरा गया कार रूप परिणमित हो गया, परिणम में परिणाम तत्व है, हुआ भी है क्या बोला, वो परिणम रूप नहीं हुआ क्या, वो गया कार रूप नहीं हुआ क्या, हुआ। इसका पहले मेरे को थोड़ी बहुत मुंझवण हुई, एक बार हम वहां गए थे क्या बोलते हैं वो हिम्मतनगर के आगे है ना एक का क्षेत्र है पास का, क्या नाम है, चिंतामणि, तो चिंतामणि में हम गए थे, 5-6 साल हो गए, ज्यादा भी हो गए होंगे शायद 10 साल हो गए, तो वहां पर हमने एक क्रमबद्ध पर्याय की क्लास लगाई थी, तो वहां पर मेरे को ये बहुत प्रश्न खड़ा हुआ, तो हमारे साथ में रजनी भाई थे अपने हिम्मतनगर वाले, तो सुबह सुबह हम लोग घूमने गए थे, सुबह गए थे कि शाम को गए थे, तो मैंने कहा उनको ये क्रियाकार प्रणमन जो होता है इसको क्रियाकार कहते क्यों, ज्ञान में क्रियाकार प्रणमन हुआ तो इसको क्रियाकार कहते क्यों, क्यों इसमें क्रियाकार माने ये ज्ञान बिल्कुल वो क्रिय के आकार हो जाता है क्या, जैसे कोई आदमी आया तो उसका आकार ऐसा है मनुष्याकार, तो ये ज्ञान जो है ऐसा मनुष्याकार हो जाता है क्या, कोई जानवर आ गया उसके सामने तो वो जानवर के आकार हो जाता है क्या, और ऐसे आप उदाहरण समझ लेना, कोई भी पदार्थ उदगल पदार्थ एक शेप में आया, जैसे ये कोई माइक आया, और ये ज्ञान जो है हमारा ये माइका कार हो गया क्या, ये पुस्तक आई तो हमारा ज्ञान पुस्तकाकार हो गया क्या, आदमी आया तो ये हमारा ज्ञान मनुष्याकार हो गया क्या, ये क्या होता क्या है आकार, आकार क्यों कहते हैं इसको, तो उन्होंने बताया था कि कोई साथ में था मुझे ख्याल नहीं है, उन्होंने युगल जी साहब का बताया था कि उन्होंने युगल जी साहब से यही प्रश्न पूछा था, तो उन्होंने इसका ये जवाब दिया था क्रियाकार ज्ञान क्रियाकार रूप हुआ माने क्या हुआ, क्या हुआ, बोले बस इतना समझ लो कि ज्ञान ने उस गे को अच्छी तरह जान लिया, ज्ञान का गे को अच्छी तरह जानना इसका नाम है ज्ञान में वो गेयाकार आ गया या गेयाकार रूप ज्ञान हो गया, बिल्कुल अन्योन मनतिरिक्तम याथा तथ्यम बिना च विपरीता सम्यक ज्ञानम वेद, इसको सम्यक ज्ञान जानो, ऐसा है बिल्कुल जैसा है वस्तु का वैसा स्वरूप है वैसा ज्ञान में आना, ये वस्तु के स्वरूप का गेयाकार ज्ञान में बन गया, ये सम्यक ज्ञान को परिणत हुआ, ये जो है ये सम्यक गेयाकार उसके ज्ञान में पूरे प्रतिबिंबित हो गए, ऐसा क्यों, मतलब साहब वो ज्ञान में यदि उस पदार्थ का आकार मान ले रहे तो पदार्थ तो कितने हैं अनंत, और उन सब पदार्थों के आकार ये ज्ञान होगा तो ये ज्ञान को कैसा होना पड़ेगा, कैसा हो जाएगा चित्र में चित्र बताओ, सारे के सारे आकार रूप हो जाएगा, और सारे ज्ञान को वैसे आकार रूप नहीं होना, बस ज्ञान को जैसा है वैसा है, जैसे दर्पण होता है ना दर्पण, वो दर्पण में हमारा जितने पदार्थ सामने आ जाए वो प्रतिबिंबित करता है, तो प्रतिबिंबित करता है तो दर्पण उसके आकार हुआ है क्या नहीं हुआ, देखना दर्पण के प्रदेश उसके आकार नहीं हुए, लेकिन वो पदार्थ के जैसे जितने प्रदेश हैं जैसी उसकी आकृति है जैसा जो है वो बिल्कुल उसमें वैसे का वैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, जो असली दर्पण होते हैं वो आपके वो वाले नहीं जो छोटा दिखाते हैं बड़ा दिखाते हैं दुबले को मोटा दिखाते हैं मोटे को दुबला दिखाते हैं वो वाले दर्पण नहीं, जो नॉर्मल दर्पण होता है, देखना ये उसका है आकार, और इसी कारण से ये चित्र विचित्र आकार वो ज्ञान में प्रतिबिंबित होते हैं, इसलिए इस ज्ञान को अभी पीछे कहा था कौन सी शक्ति में, स्वच्छत्व शक्ति में, कि ये जो क्रियाकार है मेचकोप योगमयी, ये जो उपयोग है वो कितना मेचक हो गया, मेचक का एक अर्थ किया है भाई साहब, अब पढ़ना इसमें आप इसमें देखना, वो 16वीं गाथा के बाद के कलश है ना 16, 17, 18, 19 वो सारे मेचक अमेचक के कलश है, वहाँ मेचक का एक शाब्दिक अर्थ दिया है, मेचक का एक शाब्दिक अर्थ दिया है मलिन मैला कुचैला मैला कुचैला कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सारा का सारा मैला कुचैला उस ज्ञान में प्रतिबिंबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई कितने गंदे से गंदे पदार्थ हो वो ज्ञान में बिल्कुल स्पेशल शब्द है ये नेचक चित्र विचित्र ऐसा नेचक उपयोग में ही ये स्वच्छत्व शक्ति है। स्वच्छत्व शक्ति के कारण उसमें जो पदार्थ जैसा है वो वैसा दिखाई देता है ऐसा उसका नेचक बना है। देखो अब मैं आपको इसमें ये बताना चाह रहा हूं कि जो क्रियाकार है उसमें कौन निमित्त है। पीछे से चल रहे हैं अपन ये शक्ति में पीछे से चल रहे हैं उस क्रियाकार में कौन निमित्त है तो कहे पर निमित्तक क्योंकि तो जितने पर पदार्थ हैं उतने गे हैं। देखना ये गे और क्रियाकार में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग को ऐसा लगता है कि क्रियाकार की गे को कह रहे हैं जबकि गे को कहते हैं ये पदार्थ को और इसका जो ज्ञान में आकार बना उसको कहते हैं क्रियाकार। वो ज्ञान के आकार को क्रियाकार कहते हैं। हम क्या समझते हैं ये गे का जो आकार है वो क्रियाकार उसको भी कह सकते हैं। कहीं कोई ऐसा प्रयोग करना चाहे तो गेयों का आकार ये क्रियाकार उसका कोई आकार है ना इसका भी उसका नाम क्रियाकार है। लेकिन वो क्रियाकार उसका क्रियाकार और उस वो उसको मिला करके कहा जाता है गे। लेकिन ये जो गेय है जैसा हमारे ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है तो उसके कारण से ज्ञान में जो इसकी प्रतिबिंब बनता है उसको कहते हैं क्रियाकार ज्ञान।
अन्यथा ऐसा मानना पड़ेगा अंधे की खीर के आकार की बात
मैंने ये क्रियाकार ज्ञान हमारा जो ज्ञान है वो क्रियाकार ज्ञान रूप हुआ। तो ये जो ज्ञान है ना हमारा ज्ञान इस ज्ञान में ये कला है। क्या कला है कि वो क्रियाकार रूप भी हुआ है फिर भी ज्ञानाकार रूप पूरा बच गया। क्या बोला ज्ञानाकार क्रियाकार रूप पूरा हो गया कि नहीं हो गया। बोले हाँ हो गया। फिर वो ज्ञानाकार पूरा खत्म हो गया कि बच गया। बोले नहीं बच गया। बोले कितना बचा थोड़ा बचा कि पूरा बचा। बोले नहीं पूरा बच गया। और क्रियाकार रूप थोड़ा हुआ कि पूरा हुआ। पूरा हुआ। क्रियाकार रूप भी पूरा हुआ और ज्ञानाकार भी पूरा बच गया। जो हमारे 14 बोल है ना परिशिष्ट में 14 बोल है उन 14 बोलों में तीसरे और चौथे नंबर के दो बोल है। तीसरे और चौथे नंबर के जो एक और अनेक के दो बोल है ना तत्त का एक बोल है एक अनेक का एक बोल है माने दो चार हो गए। फिर इसके बाद में सत असत का बोल है और वो सत असत के बोल के चार आठ भेद बन गए। सत असत के स्वद्रव्य पर द्रव्य की अपेक्षा सत असत स्वक्षेत्र पर क्षेत्र की अपेक्षा सत असत स्वकाल पर काल की अपेक्षा सत असत स्वभाव पर भाव की अपेक्षा सत असत। तो कितने हो गए आठ और चार बार। और उसके बाद में आखिरी में 13वां और 14वां बोल है नित्य और अनित्य का बोल। तो इसमें जो तीसरे और चौथे नंबर का बोल है एक और अनेक का उसमें ये बहुत अच्छा ये क्रियाकार ज्ञानाकार का विषय वहां पर उठाया है। वैसे तो पूरे 14 बोल क्रियाकार ज्ञानाकार के पूरे 14 बोल क्रियाकार ज्ञानाकार के उसमें जो तीसरे नंबर का है वो मेरे थोड़े यहाँ पर अभी प्रसंग आ रहा है। देखो उसको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ आपको बहुत अच्छा बोल है नंबर 730 है। अब देख ले जब यह ज्ञान मात्र भाव देखना बहुत अच्छा बोल बहुत बढ़िया। जब यह ज्ञान मात्र भाव अनेक क्रियाकारों के द्वारा अपना सकल अखंड संपूर्ण एक ज्ञानाकार खंडित हुआ मानकर क्रियाकारों के द्वारा मेरा ज्ञानाकार पूरा खंडित हो गया। अरे ये बचाओ मुझे इन क्रियाकारों से ये इतने सारे क्रियाकार आ जाएंगे मेरे ज्ञान में तो मेरा ज्ञान तो पूरा खंडित हो जाएगा ये नष्ट हो जाएगा। मुझे नहीं चाहिए मुझे नहीं चाहिए मुझे ये क्रियाकार बहुत परेशान करते हैं। ये मूर्ख है नंबर वन। देखिए ये कह रहे ज्ञानाकार खंडित हुआ मानकर नाश को प्राप्त होता है तब उसे द्रव्य से एकत्र प्रकाशित करता हुआ अनेकांत ही उसे जीवित रखता है। अनेकांत कहता है कि अरे ये सब क्रियाकार आ गए तेरे ज्ञान में
उससे तेरे ज्ञानाकार का कुछ भी खंड नहीं हुआ है, कुछ भी नष्ट भ्रष्ट नहीं हुआ है, तू निश्चिंत हो जा। अच्छा ठीक है। रात का अंधेरा था, सब काला काला था, हमें लगा कि अब सुबह होने वाली है, सूर्य देवता आने वाले हैं, अब उनका प्रकाश हमारे घर में घुसेगा, तो पता नहीं क्या क्या उसके हाथ में आएगा और क्या क्या वो लेके चला जाएगा। अरे बाप रे बाप,
चुप
क्यों? ऐसा पागल है तू, कल नहीं आया था ये सूरज और तेरा घर में आया था कि नहीं प्रकाश? क्या लेके चला गया था?
कल तो कुछ नहीं लेके गया था, लेकिन क्या पता आज उसका दिमाग खराब हो गया।
अरे नहीं, कुछ नहीं होता ऐसा, तू चिंता मत कर। अच्छा फिर ठीक है, ये अनेकांत ने उसको उससे बचाया, नहीं तो कितना घबरा गया था। मेरा ज्ञान आकार तो पूरा नष्ट हो जाएगा, पूरा खंडित हो जाएगा, उसमें सब ये छा जाएंगे, ये आएंगे ना गे, ये सारे मेरे ज्ञान में छा जाएंगे और मेरा ज्ञान आकार मालूम नहीं क्या होगा। घबरा मत। देखो अब दूसरा, अब दूसरा इसके सामने दूसरा एक और मूर्ख है। चौथा गुण, जब वह ज्ञान मात्र भाव एक ज्ञान आकार का ग्रहण करने के लिए, देखना उसके तो ज्ञान आकार प्रवेश हो गए तो घबरा गया था, और इसने बहुत समझदारी का काम किया पहले से। क्या समझदारी का काम किया? कि इसने ज्ञान आकार को ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञाकारों के त्याग द्वारा, मैं तो कोई ज्ञाकार को ग्रहण नहीं करूंगा, कोई ज्ञाकार को ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसा करने से क्या हुआ मालूम आपको? ऐसा करने से क्या हुआ? ऐसा करने से वो ज्ञानाकार नष्ट हो गया। लिखा है ज्ञाकारों को घबरा करके, ज्ञाकारों को मैं नहीं ग्रहण करूंगा, ज्ञानाकार का ग्रहण करने के लिए अनेक ज्ञाकारों के त्याग द्वारा अपना नाश करता है। मैंने तो ज्ञाकार कोई ग्रहण ही नहीं किए, मेरा नाश कैसे हो जाएगा? ये नाश नहीं, तूने सत्यानाश कर दिया। ज्ञान था, ज्ञान काय के लिए था? काय के लिए था ज्ञान? वो गेहों को प्रकाशित करने के लिए था, और तूने उस ज्ञान को का स्वभाव नष्ट कर दिया और बोलता मैंने अपने ज्ञान को बचा लिया, मैंने अपने ज्ञान को बचा लिया। क्या बचाया था तू? ज्ञान ऐसे बचता है? अरे जानने दे उसको, जानने दे, जितना उसके ज्ञान में आ रहा है आने दे। तू उससे ये, तू उसको रोक करके या जबरदस्ती प्रवेश करा करके या उसको आने से रोक करके तू राग द्वेष खड़ा करता है, ये राग द्वेष ये तेरा नाश करता है। तू अपने स्वभाव में रहना भाई, जिनको आ रहा है आने देना। देखो ये जो हमारा काम है ना, ये हम अपने ज्ञान के स्वभाव का बहुत सत्यानाश करते हैं इसके द्वारा, ये रोक करके भी सत्यानाश होता है ज्ञान का। कैसे सत्यानाश होता है? कि ज्ञान स्वभाव को बहुत लबालब सर्वज्ञता से भरा, सर्वज्ञता से भरा हुआ ये ज्ञान स्वभाव, और वो सर्वज्ञता से भरा हुआ ज्ञान स्वभाव, और हम ये कहते हैं नहीं मैं तो इसको आने दूंगा इसको नहीं आने दूंगा। तो ये राग द्वेष के कारण ये जो सर्वज्ञता स्वभाव में भरी पड़ी थी, वो तूने अपनी बुद्धि से स्वयं वो सर्वज्ञता को रोक दिया। वो सर्वज्ञता तो सबको जानने के लिए तैयार खड़ी थी, और मैंने कहा नहीं मैं तो इसको जानूंगा, ये तो मेरे काम के हैं, ये इनको मैं नहीं जानूंगा। तो ये तूने कर दिया उसको बंटवारा, ये सर्वज्ञता कहां रही? सर्वज्ञ स्वभाव माने केवल ज्ञान, सर्वज्ञ स्वभाव को अंदर है ही केवल ज्ञान पर्याय। हमारा वरण करने के लिए माला लेकर दरवाजे पर खड़ी है, और हमने अपने अपनी वृत्तियों के कारण हमने उसको वरण करने से मना कर दिया। ये खड़ी है वहां दरवाजे पर, और हमने दरवाजा लगा दिया, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए। स्वभाव तो सर्वज्ञता से भरा पड़ा, वो आने को तैयार, बिल्कुल आने को तैयार, कारण शुद्ध पर्याय मौजूद सर्वज्ञता की सर्वज्ञता की कारण शुद्ध पर्याय अलग से है ना साहब, वो प्रति समय मौजूद है क्या नहीं साहब, वो प्रति समय मौजूद, लेकिन हमने अपनी इस संकुचित वृत्ति के कारण वो उसको घबराता है, घबराता है, ये इनमें ही है तीसरे चौथे गोली में, क्या घबराता है, क्या पता इतने सारे ये आएंगे तो मैं इनको संभाल पाऊंगा कि नहीं संभाल पाऊंगा, जैसे इसके घर में कोई मेहमान लोग आ रहे हो ना चाय नाश्ते के, और इसको ये बहुत आतुरता हो रही है, इतनी तो मेरे यहाँ व्यवस्था नहीं है, और इतने सारे लोग आ जाएंगे तो क्या होगा, अरे आ जाएंगे तो आ जान दो, उनको कह देना भैया सब बनाओ अपने अपने पूरे और खाओ आएंगे ना, अपने क्यों मना करना, आन लो, हमारे हमने किसी को मना नहीं किया है, आ जाओ, लेकिन भैया देखो जितनी हमारी ताकत होगी उतनी हम करेंगे, और जितना बाकी तुम भी करना, और जितना घर में रहेगा उतना खाएंगे, कोई चिंता की क्या बात है, घर में बहुत है पंडित जी, इसकी चिंता नहीं है घर में है क्या नहीं, घर में तो बहुत है, हजार लोग आ जाए तो पुर जाएगा, फिर किस बात की चिंता है, लेकिन बना हुआ तो कुछ नहीं है, अरे वो आएंगे वो अपना इंतजाम खुद करेंगे, ऐसे ही सर्वज्ञता ये स्वभाव में लबा लब भरी पड़ी है, लबा लब ऐसी उतावली हो रही है आने के लिए बाहर, कि मैंने अपनी वृत्तियों के कारण इसको रोक रखा है, पंचम काल उसमें बाधक नहीं है, फिर क्या बाधक है, पंचम काल में तो पंडित जी केवल ज्ञान होता नहीं, तेरे को नहीं होगा पक्की बात, क्यों तू तो पहले से तैयार बैठा मना करने के लिए, हमारी वृत्तियां जो है इसी टाइप की, ये जो है ना ये परिणाम में परिणाम कर तो सकती, ये परिणाम में परिणाम कर सकती, पर आत्म निमित्तक, पर निमित्तक गेयकार ग्रहण स्वभाव रूपा परिणम्य शक्ति, आत्म निमित्तक ज्ञानाकार ग्रहण स्वभाव रूपा परिणाम तत्व शक्ति, ये दो 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 के जोड़े हैं ना, इनको बांट दो, असंकुचित विकास तत्व शक्ति है, दो में बटो बांटो इसको, असंकुचित असंकुचित तत्व शक्ति और अविकासत्व शक्ति, उसको यदि आप उसके स्वरूप में डालोगे तो कैसे डालोगे, यही उसके लक्षण है, क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलास आत्मिका असंकुचित तत्व शक्ति, क्षेत्र काल अनवच्छिन्न चिद विलास आत्मिका अविकासत्व शक्ति, अब दोनों एक शरीर की थी इसलिए एक साथ रख दिया दोनों के लक्षण, असंकुचित असंकुचित भी है और अविकास न संकोच होता है उसमें न विकास होता है, आत्मा न किसी का कार्य होता है और न किसी का कारण होता है, अब इसको बंटवारा कैसे करोगे, इसका बंटवारा करो, अन्य अक्रिय मान एक द्रव्यात्मिका अकार्यत्व शक्ति, अन्य कारक एक द्रव्यात्मिका अकारणत्व शक्ति, अन्य कारक मैं किसी का कारक नहीं हूं ऐसा अकारणत्व की शक्ति है मेरे में, मैं किसी का कार्य नहीं हूं अन्य अक्रिय मान, मैं किसी मेरे मेरे भैया ये काम कर दो बोले साहब पूछ सकते हैं पूछ सकते हैं तो हमसे करवा लो तुम्हारा काम जरूरत नहीं है
न्यूट्रल,
अरे हमारा करने को कहते हैं तो मना करते हो और हम कहते हैं तुम्हारा करने के लिए तो मना करते हो, क्या चक्कर है, बोले मेरे में अकार्य कारणत्व की शक्ति है अन्य क्रियमान अन्य कारक एक द्रव्यात्मिका, ये पर्याय की बात नहीं है, ये किसकी बात है, ये द्रव्यात्मकता द्रव्य है, पर्याय तो सब कार्य होती है, उनके कारण भी होते हैं, उपादान कारण होते हैं, निमित्त कारण होते हैं, उनके कारण भी होते हैं, और कार्य होता है पर्याय होती है, कार्य होता है तो उसके उसका फल भी होता है, उसका जो फल है वो उसका कार्य है, क्या बोला, उसका कारण मैंने पर्याय है ना, स्वयं पर्याय, तो उसका कोई कारण भी है और ये जो पर्याय है ये किसी का कारण है। पूर्व पर्याय का व्यय कारण और उत्तर पर्याय का उत्पाद कार्य, और ये उत्तर पर्याय का व्यय इसी का, इसका व्यय और इसके बाद की जो उत्तर पर्याय है उसका वो कार्य। तो ये जो है कार्य का कारण, ये जो पर्याय है वर्तमान पर्याय ये कार्य के कारण है, ये कार्य भी है और ये कारण अपनी पूर्व पर्याय के व्यय कार्य से हुई और अपने उत्तर पर्याय का इसके कार्य से हुई, ऐसे कार्य कारण की श्रृंखला चलती है, क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि होती है। ये क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करती है, अकार्य कारण तो सच्ची क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि कर रही है वहां पर्याय में, लेकिन यहां तक ये तो द्रव्यात्मिका है। द्रव्यात्मिका होने से क्या हो रहा है, ये द्रव्यात्मिका होने से ये ऐसा एक द्रव्यात्मिका है कि ना ये किसी का कार्य है और ना ये किसी का कारण है। माने इस मेरे द्रव्य को, मेरे द्रव्य ने ना किसी दूसरे द्रव्य को पैदा किया है और ना ये दूसरे किसी द्रव्य से, ऐसे बहुत सारे मत मतांतर है। एक एक शक्तियों के व्याख्यान से हेमचंदी साहब ये हम बहुत सारे मत मतांतरों का खंडन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मत हैं। एक वैशेषिक नाम का मत है, वो ये कहता है कि वो भगवान ने जो है ना पहले द्रव्य बनाया, द्रव्य सब द्रव्य द्रव्य बना दिए सब, फिर वो लोग यार ये द्रव्य तो सब खाली खाली है, तो फिर सब द्रव्यों में गुण डाल दिए पहले द्रव्य द्रव्य बना दिए, फिर उनमें सब में गुण डाल दिए, फिर बोले साहब इनमें फिर परिणमन भी तो होना चाहिए, तो फिर हर गुण में एक पर्याय पर्याय डाल दिए। अब एक काम, एक बार मशीन जो है अपन ने उसमें वो मोल्डर लगाया ना, तो वो द्रव्य द्रव्य का लगा दिया पहले, उसके बाद में फिर गुण गुण का लगाया तो सब द्रव्यों में गुण बांट दिए, फिर उसमें पर्याय का लगाया तो द्रव्य पर्याय बांट दिए, ऐसा बहुत ऐसा मत है और ये हमारा क्या कह रहे हैं कि ये जो इनबिल्ट जब से ये द्रव्य है, इनबिल्ट इसमें अनंत गुण है, इनबिल्ट इसमें अनंती पर्याय सब भरी पड़ी है, भूत भविष्य वर्तमान की इन बिल्ट सारी पर्याय डाल दी और ये निश्चित कर दिया। क्या निश्चित कर दिया? अब किस पर्याय को कब किस समय जम जस जम्मी देशे तेन विहानेन जम्मी कालम्मी तम तस तम्मी देशे तेन विहानेन तम्मी कालम्मी ये पर्याय वो उस समय ये प्रकट होगी, ये पहले से इन बिल्ट है, स्वकाल है उसका, स्वकाल अपने अपने स्वकाल में प्रत्येक पर्याय त्रिकाल पड़ी है। क्या बोला? पर्याय त्रिकाल होती है क्या? हाँ होती है, होती है, हर पर्याय त्रिकाल पड़ी है। कहाँ पड़ी है? अपने अपने स्वकाल में, मैंने वो व्यक्त कब होगी? व्यक्त अव्यक्त रूप से तो त्रिकाल पड़ी है और उसका उस अव्यक्त रूप में ही उसकी व्यक्तता का काल पड़ा हुआ है, वो भी उसमें पड़ा हुआ है, उसके परिणामिक भाव कि मुझे कब प्रकट होना है। कोई पूर्व पर्याय ऐसा धक्का नहीं मारती है कि भैया तू हट तो फिर मैं आऊं, अभी आएंगे इसमें, अभी आ ही नहीं सकती। देखो ये आकार कारण तत्व की शक्ति है, ऐसे परिणाम में परिणाम तत्व की शक्ति है, गे आकार ज्ञानाकार की शक्ति है, इसके बाद में एक जो है ये त्यागोपादान शून्यत्व नाम की शक्ति। देखो परिणाम में परिणाम तत्व ने इतनी भीड़ मचा दी क्या भीड़ मचा दी? बोलो सारे गयाकार आ जाओ, चिंता की कोई बात नहीं, मेरे में ऐसी शक्ति है कि मैं सबको अपने में संभाल लूंगी, मैं सबको अपने ज्ञान में। आज गुरुदेव के प्रवचन में था, आज के था कि कल के था, सारे अनंत लोका 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 लोक के द्रव्यों का ऐसा ऐसा बनाया कौलिया, क्या कौलिया चलेगा ना, ऐसा बनाया कौर उसका, और वो कौर ऐसा बनाकर के पूरा लोकालोक के तीन त्रिकालवर्ती पर्यायों का ऐसा कौर बनाया और उसको ऐसा हाथ में लिया। गुरुदेव इसमें कितने बढ़िया भेज रहे थे, वो ये कह रहे थे वो कौर तो होता है छोटा और ये मोंडू होता है बड़ा मोल्लू होता है। अरे जब मोल्लू बड़ा नहीं होगा तो यार कौन, यदि बड़ा होगा तो मोल्लू छोटा होगा तो जाएगा कैसे? इसलिए मोल्लू तो होता है बड़ा, कौन होता है छोटा, इसलिए वो चला जाता है। ऐसे ज्ञानाकार में इतनी सामर्थ्य है कि ये जो इतने ज्ञानाकार है इससे अनंत गुने और आ जाए, उसके बाद भी मेरा मोंडू जो है वो छोटा नहीं बनने वाला, उसका भी बनाऊंगा कौर, कौर बनाऊंगा। ये दक्षिण में अच्छा बढ़िया कौर बनता है, आपने देखा दक्षिण वालों का कौर भाई साहब? ऐसा लोग जो है ना ऐसे उंगलियों से कौर नहीं बनाते, ऐसा लपेट तो पूरा का पूरा और ऐसा पूरा का पूरा ऐसा बना
तमिलनाडु का होता है।
परिणाम में परिणाम तक हो सकती है ना। अच्छा सुनो सुनो, बोले स्वाब ने क्या गड़बड़ कर दिया, तुमने तो पूरे लोग का कौर बनाए और पूरा का पूरा गड़प कर गए, ये तो पूरा लोग खाली हो जाएगा, पूरा लोग तो खाली हो जाएगा ऐसे में, और तुम्हारे पेट में कितना दर्द होगा तुमको पता चलेगा। तुमने सबका तुम तो अच्छा अच्छा लग रहा था, जो भैया जी तुम्हारे घर गए थे तो अच्छा अच्छा लग रहा था खा गए, और उसके बाद में रात को 3 बजे पेट दुखा। अरे तुमने उसके बाद में हाजमोला नहीं खाई थी क्या? अरे हाजमोला की यदि जगह होती तो एक लड्डू और नहीं खा लेता। अरे तुम क्या बात करते हो, ये परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति समझाने के बाद में ये सोच भी त्याग पाला तत्व शक्ति सुनो। बोले पूरा लोकालोक का कौर बन गया और ज्ञान में समा गया, लेकिन उसके बाद जब आंख खोल करके देखा आपको पूरा दुनिया जो है खाली हो गई होगी, क्योंकि कौर बना के ये आकार सारे ज्ञान में प्रविष्ट हो गए, तो आंख बंद थी तब, अब आंख खोल करके देखा तो ये तो पूरा खाली हो गया होगा, अलोकाकाश दिखाई देगा
नहीं,
जैसे अलोकाकाश में क्षेत्र बन गए, अलोकाकाश दिखाई देगा, लेकिन जब खोल के देखा ये तो सब ऐसी के वैसे रखे, मैंने खाया क्या था पता नहीं मैंने क्या खाया था, तू आपको लगेगा ऐसा। तो त्यागो पादान शून्य तो शक्ति कहती है कि आत्मा पूरे लोकालोक का ग्रहण करता है अपने ज्ञान में ज्ञाकार के रूप में, लेकिन उसके बाद भी लोक का एक द्रव्य एक गुण उसकी एक पर्याय उसका एक प्रदेश सब सब अपनी अपनी जगह सब सुरक्षित हैं। आत्मा ने किसी का ग्रहण नहीं किया,
सृष्टि को पीता
पूरा पी गई, उसके बाद भी कुछ भी ग्रहण नहीं किया, टच नहीं किया, क्यों? त्यागो पादान शून्यत्व शक्ति। तो आत्मा में कुछ बढ़ोतरी हुई क्या? नहीं। बोले नहीं कुछ बढ़ोतरी नहीं। और हम लोग जो है अज्ञानी अल्पज्ञ है तो हम लोग तो पूरा का पूरा ग्रहण नहीं करते हैं, तो हमने बहुत सारे पदार्थों को छोड़ दिया ना। बोले नहीं तुमने कुछ नहीं छोड़ा और उनने कुछ नहीं ग्रहण किया, क्यों? क्योंकि अन्यून अनतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा आत्मा में एक बैलेंस बनाने वाली, देखना परिणाम में परिणाम तत्व शक्ति का बैलेंस ये त्यागोपादान में बन रहा है। क्या हुआ कि वो बिल्कुल त्यागो अन्यून बिल्कुल कुछ भी कम नहीं हुआ, वहां से लोक में से कुछ भी कम नहीं हुआ, और आत्मा ने कुछ भी ग्रहण नहीं किया त्यागो पादान सुने दोनों तरफ से, यहां भी घटेगा यहां भी घटेगा। आत्मा ने कुछ छोड़ा नहीं, आत्मा ने कुछ ग्रहण नहीं किया, क्यों रहा? आत्मा तो बस अपने स्वरूप में नियतत्व रूपा नियत है, निश्चित है, अपने स्वरूप से वो जरा सा कम नहीं होता, वो स्वरूप स्वरूप से कुछ जरा सा ज्यादा नहीं होता, स्वरूप नियतत्व रूपा। क्या होता है स्वरूप नियतत्व रूपा? आज सुबह हम लोग घोषणा कर रहे थे महावीर विद्यालय के जन की, है ना, उन्होंने कहा भाई साहब ने कि साहब हमारी तरफ से संरक्षक बना दो, साहब आपने 1,00,000 रूपये दिया, नहीं अभी नहीं दिया लेकिन वो दे देंगे, लेकिन पहले ये तो बताओ कि कुछ दे सकते हो क्या नहीं दे सकते, गुरुदेव इसको बहुत याद करते थे, त्यागो भाजान शून्यत्व शक्ति। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ त्याग कर सकता है क्या? और कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण कर सकता है क्या? सब अपने अपने स्वरूप में नियत है। मेरे पास में इतना ज्यादा नहीं है कि मैं कुछ त्याग कर सकूं, और मेरे पास में कुछ कम नहीं है कि मुझे किसी के ग्रहण करने की जरूरत हो। बोलो। तो ये जो हम लोग इतना दानवान करते हैं इसका क्या मतलब है?
अरे ये सब व्यवहार का विषय है। कोई किसी को दान नहीं कर सकता,
तो ये सब हमारा नहीं है क्या? तेरी मान्यता में है कि ये हमारा है, पहले हमने अपनी मान्यता में बनाया कि मेरे पास में इतनी संपत्ति, बैंक बैलेंस इतना है, 150,000 रुपए का, 2 करोड़ रुपए का मेरे पास में इतना बैंक बैलेंस है। ये हमने अपनी बुद्धि में ही कल्पना में उसका ग्रहण किया, और फिर हमने कहा कि साहब 1,00,000 रुपए उनको दे दो, साहब 1,00,000 रुपए उनको दे दो। ये हमने अपनी बुद्धि में ही छोड़ा, बुद्धि में ही ग्रहण किया था और बुद्धि में ही छोड़ा। कुछ भी यहाँ तो ना कुछ दिया गया और ना कुछ लिया गया। कौन देने वाला और कौन लेने वाला? बोलो। कुछ नहीं है हमारा। हाँ है तुम्हारे पास, तुम्हारा है। क्या है हमारा? अन्योन अनतिरिक्त स्वरूप नियतत्व रूपा, ये हमारा है। त्यागोपादान शक्ति हमारी है, ये हमारी है। स्वरूप में नियत है, इसने अनंत गुणों को ऐसा बांध के रखा है। यदि इसको एक गुण की भी कुछ यदि अलग से जरूरत होती, कुछ थोड़ा बहुत कमी इसमें होती, कुछ जरूरत होती, तो वस्तु की व्यवस्था में कुछ दिखाई नहीं देता है। वस्तु की व्यवस्था को देखो, कोई द्रव्य में कुछ ऐसी कमी दिखाई नहीं देती है कि इसकी पूर्ति होना चाहिए था वैसा, और किसी द्रव्य में कुछ इतना अतिरिक्त नहीं दिखाई देता है कि साहब ये एक्स्ट्रा था। क्यों? विशेष गुण तो ठीक है सब द्रव्यों में होना चाहिए, लेकिन ये सामान्य गुण तो सब एक्स्ट्रा ही है ना सब द्रव्यों में, तो मेरा तो कोई स्पेशलाइजेशन है नहीं, इसलिए जो है ये तो आत्मा में एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। बता, सामान्य गुण ज्यादा महत्वपूर्ण है कि विशेष गुण? अभी मेरा सामान्य गुण घोड़े पे बैठा है, कौन महत्वपूर्ण? घोड़े पे कौन चढ़ेगा? सामान्य गुण बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष गुणों से ज्यादा। क्यों? अरे अस्तित्व बनाए रखने का काम तो वो कर रहा है, और अस्तित्व ही नहीं होगा तो तुम्हारा जीवन तो क्या करेगा? बोलो। अस्तित्व ही नहीं होगा तो जीवन तो क्या करेगा? अस्तित्व होगा तो चैतन्य होगा ना, और अस्तित्व ही नहीं है तो चैतन्य कहां से होगा? वस्तुत्व ही नहीं होगा तो तेरे प्रत्येक गुण अपना क्रिया अर्थ क्रिया कारित्व करेंगे, और वस्तुत्व गुण ही नहीं होगा तो दूसरे गुण अर्थ क्रिया कारित्व किसमें करेंगे? द्रव्यत्व होगा तो सब गुण सब द्रव्य परिणमन करेंगे। द्रव्यत्व ही नहीं हुआ तो ये परिणमन कौन करेगा? ये ज्ञान परिणमन कहां करेगा? ज्ञान ही तो नहीं उसका, द्रव्यत्व ही नहीं है तो परिणमन कैसे होगा? इसलिए ये कम नहीं है गुण, सामान्य गुण। ये एक्स्ट्रा नहीं समझना कि साहब ये हमारे तो वैसे ही विशेष गुणों का इतना बोझा था, अब ये सामान्य गुण और आ गए। अरे ये बोझा नहीं है, ये प्रत्येक द्रव्य की इसमें सुंदरता है। एत निश्चय ततो समो सर्वत्र सुंदरो दोये। ये सामान्य गुण और विशेष गुण सब मिलकर के इस एकत्व में आत्मा के अनंत गुणों के एकत्व में ही उसकी सुंदरता है। इनमें से एक भी कम हो जाए तो उसकी सुंदरता नष्ट हो जाती है। पता नहीं कैसा लगेगा, एक एक गुण कम करके बताओ, एक गुण अनंत गुण है ना सामान्य गुण, एक सामान्य गुण कम कर दो, ये पता नहीं ये द्रव्य कैसा रहेगा, इसकी सुंदरता पूरी नष्ट हो जाएगी।
द्रव्य का विधान है,
विधान विशेष गुण से उसकी सुंदरता है, विशेष गुण से भी उसकी सुंदरता है। आइडेंटिटी है ना सबकी, सब द्रव्यों की अलग अलग आइडेंटिटी, वो विशेष गुणों के कारण है। लेकिन उनकी जो सामान्य आइडेंटिटी आवश्यक है वो सामान्य आइडेंटिटी सामान्य गुणों से है, इसलिए उसके बिना कुछ काम नहीं होगा। अन्यून अनतिरिक्त स्वरूप नेतृत्व रूपा त्यागोपादान शून्य। अभुलघुत्व शक्ति पर चलते हैं। ये अभुलघुत्व जो शक्ति है ये थोड़ी सूक्ष्म है। चार स्टेप है इसकी, चार या तीन स्टेप है, चार चार। देखो चार स्टेप कैसी है इसकी, मैं चार स्टेप में पढ़ रहा हूं इस शक्ति को। सट स्थान पतित बोलो, पहला पहला पद, पहला पद शब्द तो इसमें चार तीन है, सट स्थान पतित शब्द तीन है लेकिन पद एक है। सार्थक पद, पद जो होता है वो सार्थक होता है। सट माने क्या, छह, छह माने क्या, अब यहाँ पर स्थान, तो ये इसलिए जो है इन तीनों शब्दों से मिलकर के एक पद बना है। सट स्थान पतित बोलो,
सट स्थान पतित।
दूसरा वृद्धि हानि परिणत, तीसरा स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण, विशिष्ट गुणात्मिका अगुरु लघुत्व शक्ति। पहला क्या है, सट स्थान पति। दूसरा क्या है, वृद्धि हानि परिणत। तीसरा क्या है, स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण। चौथा क्या है, विशिष्ट गुणात्मिका। देखो इसके लिए ये कहीं नहीं लिखा, आत्मा के सभी गुण थी, सारी शक्तियां थी, लेकिन ये जब अगुणभुत शक्ति आई तो आचार्य इसके लिए एक स्पेशल संबोधन कर रहे कि ये आत्मा की एक विशिष्ट गुणात्मिका है, ये एक विशेष गुण है आत्मा का। अरे विशेष गुण है तो सब विशेष गुण है, क्या सामान्य गुण है अगुणभुत। फिर इसको विशिष्ट क्यों कह रहे हैं, अरे सामान्य गुणों में ये विशेष है। सभी विशेष है, सब सामान्य गुणों में अस्तित्व गुण अपना विशिष्ट है, वस्तुत्व अपना विशिष्ट है, सब विशिष्ट है। लेकिन इसके लिए आचार्य का जैसे एक मन हुआ लिखने का कि इसके साथ में ये शब्द जरूर जुड़ना चाहिए, क्या कि अगुण अगुत्व शक्ति जो है विशिष्ट गुणात्मिका है, ये विशेष गुण वाली है। क्या विशेष गुण है इसका, क्या विशेष गुण है, अरे विशेष गुण स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण। वाह, माने ये अगुलघुत्व गुण ये उसको स्वरूप में प्रतिष्ठा बनाए रखता है उसकी, स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण, माने वो स्वरूप में प्रतिष्ठित जो रहता है, प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है किस शक्ति के कारण, या अगुलघुत्व शक्ति के कारण प्रत्येक द्रव्य अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। और इस प्रतिष्ठित को आप दूसरे अर्थों में सोचो कि प्रत्येक द्रव्य स्वरूप प्रतिष्ठा के कारण उसका एक सौंदर्य है, वो अपने अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है। क्या माने, जैसे लोक में प्रतिष्ठा होती है ना, अरे साहब इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, साहब इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, हमारे अतिथि आए इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है, ये वहां सम्मेलन शिखर के धर्मेंद्र बने थे, इनकी बड़ी प्रतिष्ठा है। और ये प्रतिष्ठा का कारण वो नहीं है स्वधर्मेंद्र बना, प्रतिष्ठा का कारण क्या है, सब द्रव्यों की जो प्रतिष्ठा है लोक में वो प्रतिष्ठा किसके कारण है, बोले ये अगुलघुत्व शक्ति के कारण है। कैसी प्रतिष्ठा, स्वरूप में प्रतिष्ठा होने से कैसा होता है, अरे प्रतिष्ठा, क्या बात करते हो, कितनी वृद्धि हो जाए कितनी हानि हो जाए लेकिन यहां पेट का पानी हिलता नहीं है, ये प्रतिष्ठा है। शेयर मार्केट कितने ही ऊपर चढ़ा जाए और शेयर मार्केट कितने ही नीचे आ जाए, आज के समाचार सुनो अंबानी बंधुओं के 20,000 करोड़ चले गए, कितने 20,000 करोड़ बोल रहा हूँ, न्यूज है आज के अखबार में। उसके कोई 11,000 चले गए, उसके कोई 9,000 चले गए, बड़े के और इसके छोटे के 20,000 करोड़ चले गए। उसको बताया, बोले तुम सुनो आज अखबार में आया है कि तुम्हारे 20,000 करोड़ चले गए। दूसरे दिन समाचार सुनो, दूसरे दिन, अब कल का समाचार। अरे 50,000 करोड़ बढ़ गए। क्या ये तो जबरदस्ती हो रहे हैं बिल्कुल। इतना बढ़ गया तो इनको फर्क नहीं पड़ता है, इतना घट गया तो इनको फर्क नहीं पड़ता है। अरे ये 10,000-20,000 करोड़ में क्या दम है? हमारे यहाँ पर देखो अब लघु तो शक्ति में क्या क्या होता है, कल पंडित जी ने बताया था, अनंत गुणी वृद्धि। कितनी वृद्धि हुई? मैंने पहले एक गुणी की समझ लो, एक थी, तो अनंत गुणी वृद्धि हुई तो कितना हुआ? अनंत गुना हुआ ना, उससे अनंत गुना हुआ ना, इंटू ठीक, वो इंफिनिट तो है ही, अनंत तो पूरा इंफिनिटी है हमारा, हमारा तो इंफिनिट के अलावा कुछ चलते ही नहीं, अनंत से कम में हमारी कोई बात नहीं। क्या बोल रहे हैं? अनंत गुणी वृद्धि हो गई और अगले समय में अनंत गुणी हानि हो गई। ये तो 24 घंटे में फर्क पड़ा 20,000 करोड़ का। यहां तो एक एक समय में अनंत गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात गुणी वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि, ऐसी हानि, अनंत गुणी हानि, असंख्यात गुणी हानि, संख्यात गुणी हानि, संख्यात भाग हानि, असंख्यात भाग हानि, अनंत भाग हानि। प्रति समय हरेक द्रव्य की एक अनंत गुणों की एक एक पर्याय, सुनना, एक एक पर्याय ये अवलघुत्व गुण के कारण या अवलघुत्व शक्ति के कारण ये प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुणों की प्रत्येक समय की पर्याय, ये ऐसा खेल खेल नहीं है। षट गुणी हानि वृद्धि, षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशिष्ट गुणात्मिका, ये अवलघुत्व शक्ति है, ये काम चल रहा है। किसके कारण चल रहा है? ये अवलघुत्व गुण के कारण चल रहा है। अवलघुत्व गुण कौन है, किसका है? अवलघुत्व गुण
स्वरूप
मेरा है। मैंने देखो, मैं अपनी पर्यायों में ये अड़सठ गुणी हानि वृद्धि के साथ में खेल रहा हूँ और इसके लिए मेरे को खिलाने वाला कोई दूसरा नहीं है, मैं स्वयं ही अपने अवलघुत्व गुण के कारण मैं अपनी पर्यायों में ऐसा खेल रहा हूँ। ये खेलना कहाँ कहाँ तक चलता है मालूम आपको? कहाँ कहाँ तक चलता है? पूरे साहब जब तक संसार अवस्था होगी तब तक चलता होगा सिद्ध भगवान भी अपने अनंत गुणों में अपनी एक एक पर्याय में ये षड्गुणी हानि वृद्धि के साथ में खेल रहे हैं। और ना खेले तो ये स्वरूप की प्रतिष्ठा नहीं बनेगी, ये स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण है, वो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा नहीं पाएंगे। देखना, अन्य कोई कारण नहीं है। इसलिए ये जो पर्यायों में षड्गुणी हानि वृद्धि होती है इसको स्वभाव पर्याय कहा गया है। सिद्धों में उनके अनंत गुणों में ये षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही है। और बताऊं कारण हो रही है? और बताऊं? केवल ज्ञान में भी सद्गुणी हानि वृद्धि हो रही। अच्छा, अभी केवल ज्ञान में क्या कमी थी जो ये सद्गुणी वृद्धि हुई तो ये उसमें वृद्धि हो गई? कुछ पहले समय में कुछ कम था केवल ज्ञान, जो ये वृद्धि हो गई तो कुछ बढ़ गया? अच्छा पहले समय में कुछ ज्यादा था, जो हानि हुई तो घट गया, नहीं हुआ घटा के नहीं घटा। यदि अगुणभूत गुण से देखें तो ये उसमें भी वृद्धि होती है केवल ज्ञान में भी, उसमें भी हानि होती है केवल ज्ञान में भी, लेकिन उससे उसके जानने में वो लोकालोक के प्रकाश करने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी सर्वज्ञता को जरा सी हानि नहीं है। क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि ये जो परिणमन होता है ये अर्थ पर्याय का परिणमन माना गया है, ये अर्थ पर्याय रूप होता है, षटगुणी हानि वृद्धि जो है ये अर्थ पर्याय है। आपको बता, और ये जो है अब सर्वज्ञता में यदि कम ज्यादा हो जाए तो ये उसके व्यंजन पर्याय की हानि है। देखना इस अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय में सूक्ष्मता और स्थूलता का फर्क है। ऐसे बहुत सारे पंडित जी, श्लोक वार्तिक में ऐसा आता है, द्रव्यों में भी अर्थ पर्याय होते हैं और गुणों में भी व्यंजन पर्याय होती है, इसलिए द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय का कंसेप्ट अलग है और अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय का कंसेप्ट अलग है। जो स्थूल पर्याय है वो सब व्यंजन पर्याय है, जो सूक्ष्म पर्याय है जो ये षटगुणी हानि वृद्धि से परिणमित हो रही है, जो सूक्ष्म पर्याय है जिनका परिणमन का कोई रीजन नहीं है, कोई बाह्य कारण नहीं है, इसलिए इनको स्वभाव पर्याय कहा है। षटगुणी हानि वृद्धि को स्वनिमित्तक माना है, इसमें कोई परनिमित्त नहीं है। तो ये जो सूक्ष्म परिणमन स्वरूप होता है वो अर्थ पर्याय है, जहां जहां जितनी सूक्ष्मता है वो अर्थ पर्यायात्मक है और जहां जहां जितनी स्थूलता है वो व्यंजन पर्यायात्मक है। जैसे आपको एक राग है, राग व्यंजन पर्याय है कि सूक्ष्म पर्याय, अर्थ पर्याय है कि व्यंजन पर्याय? तो राग को गुण व्यंजन पर्याय का,
अनेक काल स्थाई को व्यंजन पर्याय,
एक समय उसकी। मैंने अभी अपने जो उसमें हमने पीएचडी करी है द्रवगुण पर्याय की, उसमें सूक्ष्म पर्याय, अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय के करीब 20 अंतर उसमें हमने डिस्क्राइब किए, 20 अंतर। ये अर्थ पर्याय का, अर्थ पर्याय में ये होता है और व्यंजन पर्याय में ये होता है। गुण पर्याय भी अर्थ व्यंजन पर्याय स्वरूप है। स्थूलता में हम ये कहते हैं, स्थूलता में हम ये कहते हैं कि जितनी गुण पर्याय, जो गुण पर्याय है वो अर्थ पर्याय है, जो द्रव्य पर्याय है वो व्यंजन पर्याय है, ऐसा स्थूलता में कहते हैं। लेकिन यदि आप इसकी सूक्ष्मता में जाए, अलग पद्धति में और ग्रंथों में इसको बहुत श्लोक वार्तिक में तो ऐसा खोला पर्यायों के भेद की, इसमें क्या है, इसका ऐसा एक चार्ट बनता है, द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय और गुण पर्याय ऐसे भेद करो, फिर द्रव्य पर्याय के दो भेद करो, अर्थ द्रव्य पर्याय, व्यंजन द्रव्य पर्याय, फिर यहाँ गुण पर्याय के दो भेद करो, अर्थ गुण पर्याय और व्यंजन गुण पर्याय, ऐसे इसके चार भेद, या पहले अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय भेद करो और उनके दो भेद करो, द्रव्य और गुण, और व्यंजन पर्याय के भी दो भेद करो, द्रव्य और गुण, ऐसे इसका बहुत विस्तार है। अपना समय हो गया।
स्वभाव
विभाव और मैंने इनको मिक्स कर सकते हैं आप, इनका मिक्सिंग करेंगे तो पर्यायों का बड़ा जाल खड़ा होगा, मिक्स कर सकते हैं इन सब। तो जो है यहाँ पर अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय, ये षटगुणी हानि वृद्धि के गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में, बस मैं एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ, गुरुदेव श्री के व्याख्यानों में ये अगुर्लघुत्व की व्याख्या, मैंने जो इसकी षटगुणी हानि वृद्धि की व्याख्या और जो इसके कारण कौन है, ये षटगुणी हानि वृद्धि किन में होती है, पंडित जी ने जैसे अर्थ बताया था आपको कि द्रव्य क्षेत्र कान भाव, तो ये जो भावात्मक सूक्ष्म अंश है उसको हम कहते हैं अविभागी प्रतिच्छेद, ये भावात्मक है और वो सूक्ष्म अविभागी प्रतिच्छेद जो है वो उनकी संख्या कोई निश्चित नहीं है पर्यायों में, उनमें सर्वगुणी हानि वृद्धि होती रहती है, अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद घट जाते हैं। और ये जो है इसमें, इसमें गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी व्याख्या करी, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद आप बताओ कितने, सबसे ज्यादा अविभागी प्रतिच्छेद केवल ज्ञान के माने गए, ऐसा माना गया है कि इससे बड़ा अनंत कोई दूसरा नहीं, केवल ज्ञान के अविभाग प्रतिच्छेद से बड़ा अनंत, इससे बड़ा कोई अनंत नहीं है। और सुना गुरुदेव ने इसका एक बहुत अच्छा एक लॉजिक दिया, गुरु साहब इतने अविभागी प्रतिच्छेद ये क्या होता है, कैसे होते, आप इनको कैसे, इनका बंटवारा किया आपने, तो एक जगह गुरुदेव ने ऐसा बोला कि केवल ज्ञान का जो विषय है वो अनंत द्रव्य अनंत गुण उनकी अनंत अनंत पर्याय प्रदेश ये वो सब, तो जो एक एक पदार्थ है एक एक पदार्थ एक एक सत पर्याय द्रव्य रूप या गुण रूप कोई भी, वो एक एक सत को विषय बनाने वाला वो केवल ज्ञान का एक एक अंश है, एक एक अंश है और वो अंश उसका नाम है अनुभागी परिच्छेद। ऐसा गुरुदेव ने इसका व्याख्या करी। अब कहां करी है मैं इसको ढूंढ के आपको बता सकता हूं, आपको मिल जाएगा, आपको है ना ऐसा किया ना, ऐसा गुरुदेव ने किया ऐसा। अब विशेष चर्चा अपन बात करेंगे।
अच्छा।